संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 8 मार्च 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। गाजा के रफाह में इसराइल के आशंकित हमले की स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होने का डर। इस बीच भोजन नहीं मिलने के कारण लाखों लोगों की हालत बेहद गंभीर। महिला मजबूती के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक नया कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं में निवेश बढ़ाने की मुहिम भी। ड्रग्स का धंधा करने वाले आपराधिक गुटों की ऑनलाइन मंचों पर मौजूदगी बढ़ने पर चिंता। और बेहतर जीवन की तलाश में अन्य देशों की जोखिम भरी यात्रा करने वालों के लिए 2023 रहा सबसे घातक साल। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। और हाँ, मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN News। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में घनी आबादी वाले शहर रफाह में इसराइली सेना के किसी भी प्रकार के हमले से अत्याचार व अपराधों का जोखिम बढ़ने की आशंका है। गाजा में लड़ाई की वजह से सामूहिक विस्थापन का शिकार हुए 15 लाख फिलिस्तीनियों ने फिलहाल रफाह में शरण ली हुई है। इसराइली सेना ने धमकी दी है कि अगर हमास चरमपंथियों ने रमजान शुरू होने से पहले शेष बंधकों को रिहा नहीं किया तो रफाह पर धावा बोल दिया जाएगा। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि मौजूदा स्थिति पहले से ही विनाशकारी है और यदि आगामी दिनों में इसराइली सैन्य बलों ने दक्षिणी गाजा के सीमावर्ती शहर रफाह में सैन्य हमला किया तो नतीजे अत्यधिक भीषण होंगे।
Any ground assault on Rafah would incur massive loss of life and would heighten the risk of further atrocity crimes.
जेरेमी लॉरेंस कह रहे थे कि रफाह में किसी भी हमले में भारी संख्या में लोगों की मौत होगी और अत्याचार व अपराधों का जोखिम और भी बढ़ जाएगा। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस युद्ध को तत्काल रोका जाना होगा और लोगों की मौतें व विनाश तुरंत रोका जाए। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस की युद्ध विराम की पुकार। उधर गाजा में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भुखमरी के कारण अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी UNRWA ने बताया है कि हालात बेहद विकट हैं। हर मिनट हर घंटे ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच गाजा में सहायता आपूर्ति तेज करने के लिए एक समुद्री गलियारा उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे पर हो रही बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। यूएन समन्वयक सिगरेट काग इसके लिए अथक प्रयास कर रही हैं। शुक्रवार 8 मार्च को दुनिया भर में लैंगिक समानता के प्रयासों को तेज करने की मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस अवसर पर दुनिया भर में महिलाओं व लड़कियों की मजबूती को बढ़ावा देने के इरादे से एक नई योजना पेश की है। उन्होंने कहा है कि यदि मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक करीब 34 करोड़ लड़कियों व महिलाओं के अत्यधिक निर्धनता में जीवन गुजारने की संभावना है। ये संख्या पुरुषों व लड़कों की तुलना में 1,80,00,000 अधिक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लैंगिक समानता को बहुत पहले ही हासिल कर लिया जाना चाहिए था, मगर अब हमें अपनी कथनी और करनी के बीच के अंतर को दूर करना होगा। जरूरत के अनुरूप संसाधन मुहैया कराए जाने होंगे।
A global backlash against women's rights is threatening and in some cases reversing progress in developing and developed countries alike.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि विश्व के अनेक हिस्सों में महिला अधिकारों के लिए अब तक दर्ज की गई प्रगति पर खतरा है और विकसित व विकासशील देशों में उसकी दिशा पलटने का जोखिम भी है। यूएन के शीर्षतम अधिकारी की नई योजना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में लैंगिक समानता प्रयासों में तेजी लाने पर लक्षित है। इसमें यूएन के कामकाज के केंद्र में महिलाओं और लड़कियों को रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है। मगर उन्होंने क्षोभ प्रकट किया कि यदि बदलाव की मौजूदा दर जारी रही तो महिलाओं के लिए पूर्ण समानता लाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था की प्रमुख सीमा बहोस ने इस अवसर पर ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के मूल्य और सिद्धांत जैसी चुनौतियों का सामना आज कर रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
It is only by investing in women and girls that we will meet the challenges we face, be they economic, conflict or climate related.
सीमा बहोस कह रही थी कि महिलाओं और लड़कियों में निवेश के जरिए ही हम आर्थिक हिंसक टकराव या जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपट सकते हैं। वहीं यूएन की उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने ध्यान दिलाया कि पिछले 3 दशकों में हुई प्रगति जख्म पर एक पट्टी के समान है और इसलिए लैंगिक खाई को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने तालिबान से महिला मानवाधिकार पैरोकारों को रिहा करने की पुकार लगाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अफगानिस्तान की महिलाओं व लड़कियों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है, जिन्हें व्यापक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने कहा है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है और महिलाओं व लड़कियों पर जारी पाबंदियों से बुनियादी अधिकार व आर्थिक प्रगति बाधित हो रहे हैं। एक संक्षिप्त रिपोर्ट सुनिए अंशु शर्मा से।
हाल ही में अफगानिस्तान के दौरे से लौटी एशिया और प्रशांत के लिए UNDP के क्षेत्रीय ब्यूरो की निदेशक कनी विघ्न राजा ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं को बताया कि अफगानिस्तान की 69% आबादी जीवन यापन से जुड़ी असुरक्षा का सामना कर रही है, यानी उनके पास गुजर बसर के बुनियादी संसाधन तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वाधिक पीड़ा इस बात से पहुंची कि लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफगानिस्तान के कई हिस्से विशाल स्तर पर पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे विकास के प्रयास बाधित हो रहे हैं। UNDP के अनुसार 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से अफगान अर्थव्यवस्था में 27% की गिरावट आई है, जिससे आर्थिक प्रगति रुक गई है, बेरोजगारी दुगनी हो गई है और केवल 40% आबादी तक ही बिजली पहुंच पाई है। वित्त जैसे क्षेत्र वस्तुतः ढह गए हैं और निर्यात या सार्वजनिक व्यय जैसी आर्थिक गतिविधियों के कोई बड़े स्रोत नहीं है, जिससे लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोटे व मध्यम उद्योगों तथा किसानों पर निर्भर हो गई है।
ड्रग्स यानी मादक पदार्थों का धंधा करने वाले आपराधिक गुट अपनी अवैध सामग्री को बेचने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जानबूझकर गलत जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे विश्व भर में नशे का सेवन बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB के एक नए अध्ययन में ऑनलाइन माध्यमों पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण पाने के लिए इन्हीं माध्यमों का सहारा लेने की अनुशंसा की गई है। इनमें लोकप्रिय ऑनलाइन मंचों पर नशे के विरुद्ध मुहिम चलाने व सलाह मशविरा मुहैया कराने का उपाय प्रमुख बताया गया है। INCB के अध्यक्ष जलाल तौफीक ने बताया है कि ड्रग्स की तस्करी केवल डार्क वेब पर ही नहीं की जाती है, बल्कि आपराधिक गुट जायज समझे जाने वाले कमर्शियल मंचों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपराधिक गुट सोशल मीडिया मंचों की विशाल पहुंच का फायदा उठाते हैं और अक्सर बच्चे व किशोर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। वर्ष 2023 ऐसे लोगों के लिए अब तक का सबसे घातक साल साबित हुआ है, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अन्य देशों के लिए जोखिम भरी यात्राएं करने को मजबूर होते हैं। कुछ और जानकारी सुनिए सचिन गौड़ से।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार 2022 की तुलना में पिछले साल अपनी जान गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। विश्व भर में लोग जटिल हालात से जूझते हुए सुरक्षा और शरण की तलाश में समुद्री मार्गों का रुख करते हैं, मगर सुरक्षित और कानूनी विकल्पों के अभाव में उन्हें अक्सर जोखिम भरे मार्गों से यात्रा करने और तस्करों से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रवासन मार्गों पर अपनी जान गंवाने और लापता होने वाले व्यक्तियों के मामले सबसे अधिक 2016 में सामने आए थे, जब 8,084 लोगों की मौत हुई थी, मगर अब 2023 के आंकड़े ने इसे पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 8,500 से अधिक मौतें हुई, जिनमें 50% से अधिक डूबने की वजह से हुई। भूमध्य सागर में नाव के जरिए यात्राएं प्रवासियों के लिए सबसे घातक साबित हुई, जहां 3,000 से अधिक लोगों की मौत होने और लापता होने की जानकारी मिली है। भूमध्य सागर प्रवासन मार्ग विश्व में सबसे खतरनाक और जानलेवा रास्तों में है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।